प्रतीक भविष्य नहीं है.
So I'm going to tell you a story, hopefully I can tell it rather quickly, about Lord Jagannath and the appearance of Lord Jagannath.
हम आपको एक कथा बताएंगे जितना जल्द हो सके उतना कि जगन्नाथ किस तरह से
and the appearance of Lord Jagannath.
किस प्रकार से प्रकट हुए.
So once upon a time, many millions of years ago, there was a king named King Indrajunya who had heard about this beautiful deity named Nila Madhava.
So ek baar bahut hi karoron varsh pehle ek raja the jinka naam tha Maharaj Indrajunya aur unhone ek Nila Madhav naam ke bhagwan ki shri murti ke vishay mein suna tha.
So he sent his Brahmin associates all over the world to try to find this deity.
So unhone अपने दरबार के जो ब्राह्मण थे उनको सारे जगत में भेज दिया गया था इस मूर्ति को खोजने के लिए.
So almost all of them returned without having seen the deity.
लगभग सब वापस आ गए बिना मूर्ति के दर्शन किए.
But one of his associates, one of his Brahmin servants named Vijayapati, had stayed out longer to look for the deities, and he was staying in a village of Shabaras or pig eaters.
और उनमें से केवल एक ही ब्राह्मण बहुत देर तक बाहर रहा और वो एक शबर गांव में रहता था जहां पर वो सुअर खाते थे.
While he was staying there, he met the daughter of the head Shabara. Her name was Lalita, very spiritual name. And basically one thing led to another and he ended up getting married to her even though he was a Brahmin.
तो वो सवार नगर में रहते हुए वहां के जो मुखिया थे उनकी बेटी भी एक थी जिनका नाम था ललिता. थोड़े समय में उनका विवाह उनके साथ हो गया, ललिता के साथ, भले वो ब्राह्मण इतने ऊंची कोटि के ब्राह्मण थे.
But then he discovered that her father was disappearing every night and he was coming back smelling like sandalwood.
तो उन्होंने ये पाया कि हर रात को ललिता की जो पिता थे वो गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे और सुबह जब आते थे तो बहुत सुगंधित चंदन का महक लेकर आते थे.
So he asked his wife, what's going on?
तो उन्होंने अपने पत्नी को पूछा कि ये क्या हो रहा है.
And his wife said, it's a secret, I can't tell you.
तो पत्नी ने कहा कि ना, ये तो बहुत गोपनीय बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती.
But I'll tell you as long as you don't tell anyone else.
लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ जब तक तुम किसी और को नहीं बताओगे तब.
So ladies are very good at keeping secrets.
तो स्त्रियां हैं वो गोपनीय बात बहुत अच्छी तरह से रखना जानती हैं.
So then she told them that there was this beautiful deity Nila Madhava that her father was climbing the hill to worship every night.
तो फिर उनको कहा गया कि एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है, उनका नाम है नीला माधव और उनके पिता हर रात को उस मूर्ति को पूजने के लिए जाते हैं.
So then he went to her father Vishvasu and said, please take me to see the deity.
फिर वो अपने पिता के पास गए और कहा कि मुझे ले चलो. ससुर के पास गए, ससुर को कहा कि आप ले चले मुझे नीला माधव का दर्शन करने के लिए.
And first the father said, no, I'm not going to take you to see the deity.
पहले तो पिता ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा.
And then the father said, I'll take you to see the deity only if you're blindfolded so you can't tell where the deity is.
फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी अगर बांधी जाए तो शायद मैं तुम्हें ले जाऊंगा.
So Vijayapati the Brahmin said, yes, I'll do that, so please take me tomorrow.
तो विद्यापति ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मुझे कल ले चलिए तब.
But he said to his wife, you sew me a little pocket in my dhoti and you put holes in the pocket and then you put mustard seeds in the pocket.
फिर उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे जेब में एक छोटा सा छेद कर देना और उस जेब के अंदर खूब सरसों के दाने रखना जैसे कि उस जैसे थोड़ा सा सरसों का दाना गिरते रहे.
So in this way he knew that when he walked up the mustard seeds would fall to the ground and later on they would grow to plants and he would be able to follow that path again.
तो इस तरह से वो जान गए थे कि ये दाने गिरने के कारण वहां पर सरसों के जो पौधे हैं वो जम जाएंगे और वो हमको राह दिखा देगा. कहानी माधव है.
Okay, so he went up the hill following the Shabara all the way up the hill and he saw this beautiful deity Nilamadava, the most gorgeous deity in creation.
फिर वो इस इनके सवारा के साथ गए अपने ससुर के साथ ऊपर और वहां पर उन्होंने बहुत ही सुंदर ये नीलमाधव की मूर्ति का दर्शन किया.
And while he was looking at the deity, he saw that there was a crow on a nearby tree, and the crow fell into the lake next to the temple, and then the crow went back to Godhead. He got a spiritual form.
जब वहाँ पर वो मंदिर में थे दर्शन कर रहे थे उस समय ये भी देखा कि एक पास में पेड़ के डाली के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा था वो वहाँ के पास के तालाब में गिरा और तालाब में गिरते ही उनको एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वो भगवत धाम चले गए.
So then,
चार हाथ वाला चतुर्भुज.
Chaturbhuj, yes. So then he got up in the tree and was ready to jump in himself because he wanted to go back to God and he wasn't that attached to his wife.
So वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया वहां से कूदने चाहता था क्योंकि वो भी तुरंत इसी तरह से भगवान के धाम वापस जाना चाहता.
And then he heard a voice and the voice said, "No, you got to tell King Indrajunya. He sent you to find this deity. So immediately go back and tell King Indrajunya."
तो उस समय एक आकाशवाणी हुई और उसे उसे कहा गया कोई आवाज आई कि नहीं तुम्हें इंद्रद्युम्न के पास वापस जाना है और राजा से कहना है कि कहां पर ये नीलमाधव की मूर्ति है.
But then the Shabara heard a voice from the sky. The voice said, "I want to be worshipped." The deity was speaking. "I want to be worshipped by the king, not by you anymore. I need a more opulent worship."
तो उस समय सवारा को सुनाई दिया भगवान बोल रहे थे कि अब मैं बहुत ही आलिशान और वैभव से मेरी पूजन कराना चाहता हूँ.
And so when the Shabara brought the Brahmin back down the hill, he tied up the Brahmin so the Brahmin couldn't get away.
तो सवारा ने जब अपने दामाद को नीचे लाया हुए तो उस समय उनको बांध दिया ताकि वो वहां से कहीं जा ना सके.
So finally, Lalita said to her father, the Shabara, "Please let my husband go." And so then Vijayapati was able to go back to King Indrajunya.
फिर ललिता ने अपने पिता को कहा कि कृपया आप इनको छोड़ दीजिए और इनको जाने दीजिए. तो उनके आग्रह के कारण फिर उस सवारा ने विजयपति को रिहा कर दिया और वो वहां पर राजा के दरबार में प्रस्थान किया.
And then King Indrajunya came back with all of his men and they found the mustard seed trail or the mustard plant trail and followed it up the hill, but they didn't see the deity.
So फिर महाराज इंद्रद्युम्न आए अपनी सेना को लेकर और उन्होंने वहां पर सरसों के सभी पौधों को देखा और उस पौधों के सहारे वो ऊपर गए मंदिर तक पाया लेकिन वहां पर वो नीलमाधव की श्री मूर्ति नहीं थी.
So they put the Shabara in jail.
तो उन्होंने इस Shabara को गिरफ्तार कर दिया.
But then they heard a voice from the sky saying, "O king, I shall not appear in this age anymore as Nilamadava, but I shall appear in Puri, Jagannath Puri, as Garu Brahman."
तो उस समय एक आकाशवाणी के द्वारा महाराज को सूचित किया गया कि भगवान कहते थे कि मैं अब इस नीलमाधव के रूप में नहीं आने वाला हूँ अब मैं एक दारू ब्राह्मण के रूप में आने वाला हूँ पुरी में.
So the king, he went to Jagannath Puri and constructed this big temple that was 60 cubits under the ground, 120 cubits above the ground. And he went to Lord Brahma to inaugurate the temple. He went to get Lord Brahma.
The Maharaj Indrajunya ek parvati vishal mandir ki sthapna ki, jo 60, yani 60 cubits.
Cubits are like the arms, like that. That's an arm. That's a cubit.
एक हाथ के बराबर अगर 60 हाथ के बराबर नीचे और 120
या 120
ऊपर. एक इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया और फिर वो प्रस्थान किए ब्रह्मलोक पर ब्रह्मा को आमंत्रित करने के लिए मूर्ति की स्थापना के लिए.
But the problem is that the time experienced in Brahmaloka is different than the time experienced on the earth. So by the time he got to Brahmaloka, then all of his relatives had passed away, and two kings had actually taken over and then left.
लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मलोक में के समय और पृथ्वी के समय में इतना अंतर था कि जब वो ब्रह्मलोक के थोड़ी वहां पर रहते समय थोड़ी समय रहे, लेकिन यहाँ के कई युग बीत गए थे जिसमें कि एक कई सब लोग इस जगत से चले गए थे और फिर एक या दो और राजा जो थे वो वहां पर अब शासन कर रहे थे.
So then he came down to the earth, but the king that had taken over said that it was his temple instead of Indradunya's temple that this king had claimed he had constructed it.
तो जब इंद्रदुम्न वापस आए तब जो वर्तमान वहां पर राजा थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा राज्य है, तुम्हारा नहीं.
And so, at the same time, there was a crow there, who was that ancient crow who was always chanting Ram Nam, and he had seen who had actually constructed the temple, and he said, Indradunya is telling the truth, he has constructed a temple.
वहाँ पर डाली पर एक बैठा हुआ कौवा था जो बहुत ही पुराना था और ये राम भक्त था और
Yeah, it was a Ram Bhakta.
और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर युग युगांतर से हूँ और मैंने देखा था कि वास्तव में इस मंदिर का निर्माण महाराज इंद्रदुम्न ने ही नहीं किया था.
So, but still, there was no deity in the temple. So, King Indradunya began to fast, thinking, "I've committed a great offense. Krishna has not appeared yet."
तो फिर भी मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं थी और महाराज सोचने लगे कि मैंने कोई अपराध किया होगा और इसके कारण वो महाराज वहां पर उपवास करने लगे कि भगवान मैं नहीं आए हैं इसलिए उपवास कर रहे हूं.
Then the king had a dream, and in the dream, the Lord appeared to him and said, "Go down to the ocean, and you will see a gigantic log coming. And with that log, you can make the deities."
तो फिर महाराज के स्वप्न में भगवान स्वयं आए और उन्होंने कहा कि तुम जाओ समुद्र के पास और वहां पर तट पर आपको एक बहुत ही बड़ा मोटा पेड़ मिलेगा और उसको तुम ले आओ और उन्हीं से इन मूर्तियों का निर्माण होगा.
So when they found the log, the king couldn't move it, all the king's horses, all the king's men couldn't move the log. Finally, Krishna sent him a message, "You have to call for my Shabara servant, that's Vishvasu, and Vidyapati, and with them you'll be able to move the log."
तो बहुत प्रयास किया गया राजा के द्वारा, उनकी सेना के द्वारा, हाथियों के द्वारा, परंतु ये जो बड़ा पेड़ का लॉग था वो हिल नहीं रहा था. तो फिर भगवान ने फिर से उनको आदेश दिया कि जाओ विद्यापति और सवार को बुला लाओ और उन्हीं के द्वारा ये मैं यहां से हिल सकूंगा.
एंड सो दे पुट द लॉग इन अ रूम एंड देन अ स्कल्प्टर appeared, and it was actually Vishwakarma from the heavenly planets who had come to sculpt the log.
So, ये बड़ा पेड़ का जो लकड़ी था, वो उन्होंने लाकर एक कमरे में रखा, और फिर एक कारीगर आया जो बनाता था मूर्तियों को, और वास्तव में ये विश्वकर्मा था, देवताओं का कारीगर.
So he said to the king, "Give me 21 days, and then I will sculpt the deity. But if you interrupt me at any time, I'm going to leave. So you leave me alone in a locked room with the wood for 21 days."
उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे एक बंद कमरे में 21 दिन तक रहने दो और मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा, परंतु अगर उससे पहले तुमने मुझको ऐसे मुझको डिस्टर्ब कर दिया तो मैं ये कार्य करना बंद कर दूंगा.
And so the sculptor began to work, and the king could hear every day chip 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 as the wood was being sculpted in the form of a deity.
तो प्रतिदिन ये कारीगर भगवान की मूर्ति को बना रहा था और आवाज आ रहा था चिप चिप कर कर और राजा को आश्वासन था कि हाँ मूर्ति अंदर बन रही है.
Then after 14 days no one could hear the sound anymore.
और 14 दिन के बाद फिर कोई आवाज अंदर से आ नहीं रही थी.
So the king asked his ministers, "What am I going to do? Maybe the sculptor got sick. Maybe we should go in and check on him."
तो राजा अपने साथियों को बोलने लगे कि क्या हुआ कि ये बीमार तो नहीं हो गया, अंदर कुछ कर नहीं रहा है, क्या हम अंदर जाकर देखें क्या हुआ है.
And he said, "You're right." No, the king's advisor said, "No, don't check on him because he said he was going to leave If you came in and opened the door,
तो जिसने सलाहकार थे राजा के उन्होंने कहा कि नहीं आप अंदर मत जाइए क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप उनको बीच में आ जाएंगे अंदर तो फिर वो कारीगर का काम बंद कर देंगे.
But then the queen started nagging him. You got to go in and check.
परंतु फिर वो जो रानी थी वो उनके पीछे लग गई कि ना तुम्हें अंदर जाकर देखना ही होगा.
You're the king. You can do anything you want, dear.
तुम ही राजा हो तुम कुछ भी करना चाहते तो कर सकते हो.
So he listened to his wife instead of his advisors.
तो उन्होंने अपने पत्नी की बात मान ली और अपने जो सलाहकार थे उनकी बात ना मानी.
No purport to that. So
इनका कोई तात्पर्य नहीं है. ये तो सब जानते ही हैं.
So then he opened the door. And the sculptor was not there because the sculptor had disappeared because he had interfered.
तो उन्होंने द्वार खोला और देखा कि वो कारीगर कहीं कहीं नहीं दिखाया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं रहूंगा नहीं अगर ये खोल के द्वार.
And then he looked and he saw the forms that we see here, Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra, and he thought, "Oh no, I didn't allow the sculptor to finish. I have committed a great offense."
तो फिर उन्होंने जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि भगवान की ये जो रूप है वो पूरे नहीं बनाए गए थे. और उन्होंने कहा सोचा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है अरे अब मैं क्या करूं ये तो मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है.
So he began to fast again.
फिर से वो उपवास करने लगे.
Then the Lord appeared to him in the dream and said, "This is the way I want to appear. This is my trick."
फिर भगवान उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि इसी रूप में मैं आना चाहता हूं यही मेरा छल था तुम्हारे साथ.
And then the Lord said, "You can ask me for any benediction you want."
फिर उन्होंने भगवान ने उनसे कहा कि तुम जो भी कुछ मुझसे मांगना चाहते हो मांगो.
So the king basically asked for the benediction, first of all, that he would have no children. That's interesting.
उस राजा ने फिर भगवान से ये वरदान मांगा कि सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कोई संतान ना हो.
Because he didn't want his children claiming proprietorship over the temple. He wanted the temple always just to belong to the Lord, not to his family.
क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी उनके जो संतान है वो कभी भी इस मंदिर के ऊपर अपना अधिकार ना जमाए. वो चाहते थे कि भगवान ही इस मंदिर का अधिकारी रहे.
And then he asked for the benediction, "My dear Lord, your hands should never be dry."
फिर उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा कि हे भगवान आपके हाथ जो है वो कभी सूखे नहीं रहेंगे.
Because I want you to be eating all day long.
क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पूरे दिन भर खाते ही रहे.
So Lord Jagannath can eat 24 hours a day.
तो भगवान श्री जगन्नाथ जो है वो 24 घंटे खा सकते हैं.
So anytime you have anything to offer, you can bring it before Lord Jagannath and he will eat it.
कुछ भी आप किसी भी समय लाएंगे और वो आप जो भगवान को दे दीजिए और वो खाएंगे.
Of course it has to be vegetarian.
हाँ लेकिन वो शाकाहारी होना चाहिए.
So then you can ask, why did Krishna want to look like that?
तो आप शायद पूछना चाहेंगे कि क्यों भगवान ऐसा दिखना चाहते हैं.
So one final story, one new story.
और अब एक नया कथा है.
This is a short story.
एक छोटा सा story.
So what happened is that once upon a time when Krishna was in Dwarka. Krishna is called Dwarkadish. He's a Gujarati.
एक बार कृष्ण द्वारका में थे. कृष्ण को द्वारकाधीश कहते हैं और कृष्ण गुजराती है. तमाशा है ये.
So actually Krishna appeared in UP, not in Gujarat. So but later on he became a Gujarati.
वास्तव में कृष्णा उत्तर प्रदेश में थे लेकिन उसके बाद में वो द्वारका गए थे जिसमें वो गुजरातियों के साथ रहे थे.
So anyway, Krishna was in Dwarka. And his wives wanted to know what Krishna did when he was a little boy in Vrindavan.
Krishna Dwarka mein rehte the aur unki patniyan ye janna chahti thi ki jab wo Vrindavan mein the to wo kya kar rahe the.
So they went to Rohini, who was Balaram's mother, and said, "What did Krishna do?" And Balaram also, "What did they do in Vrindavan?"
Tab wo जो बलराम की माता थी रोहिणी उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि कृष्णा और बलराम दोनों वृंदावन में जब थे तो क्या कर रहे थे.
And Rohini said, I'll tell you, but no one else can hear, especially Krishna can't hear and Balaram can't hear, so we have to put a guard at the door.
Rohini ne kaha ki main tumhe bataungi, lekin ye aisi baat hai ki Krishna ko nahi sunna chahiye aur Balaram ko bhi nahi, isliye humko ek pehradar lagana padega dwar par ki koi aa na jaye.
So they chose Subhadra, who you see in the middle here, as the guard.
तो उन्होंने चुना सुभद्र को कि वहां द्वार पर वो पहरेदार थे.
So they said to Subhadra, stand guard, but don't listen to what's happening inside here.
उन्होंने सुभद्र को कहा कि तुम यहां पर पहरा दो लेकिन बिल्कुल सुनना मत क्या हम बोल रहे हैं.
So what happens when you tell someone not to listen?
क्या होता है जब आप किसी को कहते हैं सुनना मत.
So she immediately put her ear to the door.
तो उन्होंने द्वार पर अपना कान ऐसे लगा दिया, जमा दिया.
And because Krishna's pastimes in Vrindavan are so amazing, so intimate, and his devotees are so loving, she just like went into trance and her eyes became very wide and her arms shrunken like this.
तो कृष्ण के लीला जो है वृंदावन में वो इतने अद्भुत थे और इतने आश्चर्यचकित थे कि उनकी आंखें बड़ी हो गई और उनके जो हाथ थे वो अपने शरीर में समेट ले गए.
So then, who walks by next but Balaram? He sees his sister looking very strange.
तो फिर बलराम आए वहां पर चलते हुए, उन्होंने देखा अपनी बहन को वहां पर और बहुत ही विचित्र लग रही थी देखने में.
So he puts his ear to the door.
उन्होंने अपना कान भी द्वार पर रख दिया.
And a similar thing happens to him. His eyes open wide.
उसी प्रकार की बात उनके पास भी हो गई कि वो भी आश्चर्यचकित हो गए, उनके आंख बढ़ गए और हाथ समेट गए.
And then same thing happens to Krishna too.
और कृष्ण को भी ऐसा ही होता है.
So they're all feeling separation from Vrindavan.
तो उन तीनों को वृंदावन से विरह अनुभव हो रहा है.
So in that intense mood, it's called Vipralamba, Vipralamba Seva. The Lord exhibits this particular aspect or form.
तो उसी भाव में जिसको विप्रलंबा कहते हैं भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं.
And then once a year, the devotees enact the pastime of taking the Lord back to Vrindavan, and that's called Ratha Yatra.
तो साल में एक बार भक्त लोग जो भगवान को वापस वृंदावन ले जाना चाहते हैं वो उस जो उस त्योहार को कहा जाता है रथ यात्रा, उस उत्सव को.
सो दैट्स व्हाई कृष्णा लुक्स लाइक दैट एंड दैट्स द होल स्टोरी. नाउ वी विल टॉक अबाउट इनिशिएशन.
तो इसलिए कृष्णा इस प्रकार से दिख रहे हैं यहाँ और यही कथा है और अब हम दीक्षा के विषय में बोलेंगे.
ओके, जस्ट टू स्पीक वेरी शॉर्टली, इनिशिएशन मीन्स टू स्टार्ट वन स्पिरिचुअल लाइफ बाय कनेक्टिंग विद ए bona fide spiritual master who is a representative of the disciplic succession.
Diksha ka arth hai ki hum apna adhyatmik jeevan shuru kare ek pramanik paramparagat guru ke sath sambandh sthapit karte hue.
We are members of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya.
Hum Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya ke sadasya hain.
Which comes directly from Krishna to Lord Brahma to Narada Vyas throughout the ages to the present most manifest, most let's say ecstatic, prominent person who is his divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Ye parampara aati hai bhagwan se brahma, brahma se narad se vyas se madhvacharya, is tarah se ye parampara aati rahi thi aur aaj ke aadhunik samay mein iske sabse उच्च कोटि के जो प्रमाणिक आचार्य है वो है हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद.
एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद एंड गिविंग इनिशिएशन, बट एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रभुपाद एंड इनिशिएटिंग आवर ओन डिसिपल्स एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रभुपाद.
तो हम वास्तव में यहां पर है अब प्रभुपाद के प्रतिनिधि बनकर और हम अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद के प्रतिनिधि बनकर, प्रभुपाद के लिए दीक्षा दे रहे हैं.
सो That is why we know what we're presenting is the truth, because it is coming down in an unbroken chain of the cyclic succession.
इसलिए हम जानते हैं कि जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि हम एक प्रामाणिक परंपरा में ये ज्ञान दे रहे हैं.
Srila Prabhupada has trained us that anything we say regarding spiritual life, we can quote from the Vedic literatures to verify it.
Srila Prabhupada ne humko is prakar se samjhaya ki kuch bhi hum jo adhyatmik jeevan par bolte hain usko hum shastra ke sath praman dekar keh sakte hain.
Prabhupada has trained us like spiritual lawyers. Spiritual lawyers means you can quote from the law, and the law is the Vedas, and the Vedas come directly from the Supreme Personality of Godhead, Krishna.
Srila Prabhupada ne kaha tha ki hum adhyatmik vakil ki tarah hai, jo vakil vastu mein apne pustakon se praman dete hain, usi tarah se hum apne Vedic shastra mein se praman dete hain.
So when devotees take initiation, they are joining Srila Prabhupada's movement to serve within Srila Prabhupada's movement, to study Srila Prabhupada's teachings, and to help with the expansion and preaching of Srila Prabhupada's movement.
So, jo bhakt jan diksha le rahe hain, wo vastav mein Srila Prabhupada ke sanstha mein shamil ho rahe hain, Srila Prabhupada ki seva mein lagte hain, aur is sanstha ko aage badhane ka karya mein lagte hain.
So when people take initiation, they are vowing to serve Prabhupada's movement, vowing to chant a certain number of rounds, 16 rounds of the Hare Krishna mantra every day, and vowing for the rest of their lives to follow the four regulated principles.
So, jo diksha le rahe hain, wo Srila Prabhupada ki sanstha mein seva pradan karne ka vrat lete hain, aur pratidin 16 mala jap karne ke liye vrat lete hain, aur char papmay karma se dur rehne ka shapath lete hain.
And by doing that, they are assured of success, and at the end of this life, they will go back to Krishna.
ऐसा करने से ये आश्वासन है कि उनको अवश्य ही इस जीवन के अंत में भगवान के पास वो वापस जा सकते हैं.
It is a very easy process.
ये बहुत ही सरल मार्ग है.
As mentioned in the Vedic literatures, Krishna, Ekon Dharma Krishna Nam Sankirtan. In this day and age of Kali, there is one dharma, and that dharma is Krishna Nam Sankirtan, as taught by His Divine Lord Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu.
ये शास्त्र का प्रमाण है कि इस युग में केवल एक ही धर्म है, वो है कृष्ण नाम संकीर्तन, और इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही बदलाया था.
The process of God realization is very, very simple in this day and age.
भगवान के विषय में समझ लाने का जो मार्ग है इस युग में बहुत ही सरल है.
You don't have to go to the Himalayas to execute severe austerities. You don't have to take sannyas. Stanis tata shudikatam ban tan ban manovir. Just remain where you are and add this chanting to your life.
आपको हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या नहीं करनी है, आपको ना ही सन्यास ग्रहण करना है, परंतु जिस परिस्थिति में आप है उसी परिस्थिति में रहकर आपको भगवान का नाम ग्रहण करना है.
So while chanting, one should avoid the 10 offenses. This is something that Prabhupada would always mention at the time of initiation.
So jab karte hain, bhagwan ka naam lete hain, us samay 10 naam aparad se hame dur rehna hai, aur ye baat jo hai wo Srila Prabhupada hamesha diksha ke samay par bolte the.
The 10 offenses are as follows.
10 naam aparad jo hai wo is prakar se hai.
Blaspheming the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord.
उन भक्तों की निंदा करना पहला अपराध है, कि उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए.
Considering the names of the demigods like Brahma, Shiva, Indra, Varuna to be equal to or independent of the holy name of Lord Vishnu or Lord Krishna.
या ऐसा समझना कि जो देवी देवता है जैसे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण इत्यादि, ये सब कृष्ण और विष्णु से स्वतंत्र है या उनके बराबर है.
Disobeying the order of the spiritual master.
और गुरु की आज्ञा ना मानना.
Blaspheming Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version.
श्रुति स्मृति पुराण आदि जितने वैदिक शास्त्र है उनकी निंदा में लगना या उनकी आलोचना करना.
That means all Vedic literatures like you just mentioned, the Shrutis, the Smritis, the Puranas, the Itihasas, anything that is coming down in the descending process from Krishna or Srila Veda Vyas.
ये जो शास्त्र बताए गए हैं अभी महाराज के द्वारा, उन सभी शास्त्रों की अगर निंदा करें इस प्रकार से, जो व्यास दीप के द्वारा दिया हुआ है और प्रामाणिक शास्त्र है तो उनकी निंदा करना यह अपराध है.
And next offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination.
और फिर है कि भगवान की महिमा जो है वास्तव में उसको कल्पित समझना.
And next offense is to give some concocted, perverted interpretation about the chanting of Hare Krishna.
और फिर है कि अगर हम कोई सामान्य संसारिक अर्थ निकाले भगवान के नाम पर.
Next offense is to commit sins on the strength of chanting, thinking that because you're chanting you can get away with any damn thing.
और दूसरा और एक अपराध है कि हम भगवान के नाम के जप के बल के ऊपर पाप कर्म करते रहे ऐसा सोचते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं. तो
another offense is to consider chanting like so many rituals, like karmakanja rituals that are there in the Vedic literatures.
फिर एक अपराध और है कि हम ऐसा समझने लगे कि भगवान का नाम जप करना है वो जैसे कोई दूसरी क्रियाकर्म हम करते हैं जो शास्त्र में बताई हुई वो ऐसी क्रियाकर्म है, ये भी अपराध है.
बिकॉज द चैंटिंग इज डायरेक्टली कृष्ण नामचिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पुनः शुनो निज मुक्तो बिनत्वाम नवनामिनो.
क्योंकि जप करना जो है भगवान का नाम उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों नाम और नामिनो में कोई अंतर नहीं.
Next offense is to instruct the glories of chanting to the faithless.
फिर कि हम अगर कोई अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा बतलाने लगे वो भी अपराध है.
And the tenth offense is to maintain material attachments even after understanding so many instructions.
दसवां नाम अपराध है कि इतना कुछ सुनने पर भी संसारिक आसक्तियां बनाए रखे, लगाव बनाए रखे.
And finally, it's also offensive to be inattentive while chanting.
और अंत में जाप करते समय ध्यान न दे, ये भी अपराध है.
So those are the negative injunctions regarding the chanting, but the positive injunctions can be found in Chaitanya Mahaprabhu's Shikshashtaka, the eight prayers of glorification of the holy name.
तो ये सब जितने बताए गए अभी अपराध ये अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे गुण भी भगवान के नाम के विषय में बताए गए हैं शिक्षाष्टकम में जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है.
But basically, while you're chanting, you should be always thinking that Krishna is dancing on the tip of my tongue and praying to Krishna, my dear Krishna, Ayananda Tanuja Kinkaram, Patita Mam Vishame Bhavam Bhurdo, Kripya Tava Pada Pankajas, Dita Duli Sadrasham Vachintaya, O Krishna, I am in this material world. Somehow or other I've fallen here. Oh, please pick me up and fix me as one of the atoms or dust at your lotus feet.
So, जब हम जब करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे जीव के ऊपर नाच रहे हैं और हमें इस प्रकार से घोर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं इस संसारिक जगत में फंसा हुआ हूँ, आप कृपया करकर हमें यहाँ से उठाकर एक कण बना दीजिए धूल की आपके चरण रज की.
So when you take initiation, you're vowing to perfect your chanting, to chant regularly every day without fault, and follow the four regulative principles of no meat, fish, eggs, no intoxication, no illicit sex, and no gambling.
तो जब हम ये दीक्षा लेते हैं तो उस समय हमें ये अपने आप ये व्रत लेना है कि हम प्रतिदिन भगवान के नाम का निरपराध जप करेंगे और साथ ही साथ ये चार जो पाप कर्म है उनसे दूर रहेंगे, कि हम मांस मछली अंडे से दूर रहेंगे, अधार्मिक स्त्री संघ से, जुआ इत्यादि और नशीली पदार्थ से.
And these promises or vows to do these things are being taken in front of Lord Jagannath.
और ये जो व्रत है वो भगवान श्री जगन्नाथ के सामने वे देंगे.
Just like I mentioned before in the story about Lord Jagannath, you could offer prasad to Lord Jagannath all day long because he doesn't like his hands to get dry. So we are offering all of you to Lord Jagannath.
जिस तरह से हमने कहा कि हम प्रसाद सबको दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि भगवान के हाथ सूखे नहीं हो, उसी प्रकार से आज हम आप सबको भगवान को अर्पण कर रहे हैं जो दीक्षा ले रहे हैं.
In other words, from this day forward, you belong to him.
आज के बाद आप सब उन्हीं के हैं.
No one else owns you. That's your family or whatever. No one else has any right to
you. या किसी को आपके ऊपर अधिकार नहीं.
Lord Jagannath.
केवल जगन्नाथ का आपके जीवन पर अधिकार.
I mean, I could tell you some stories about Shiva Gurudev in that particular regard, but I won't tell.
Some other time.
One time, I'll just tell you one story, I won't mention any names. That one time someone took initiation from Srila Jamal Krishnamurti Gurudev, and he went to his spiritual master with some dakshi. And his spiritual master said, dakshi meaning money, of course. He said, that's not what I want. I want you.
Ek baar kisne diksha li thi isi prakar se Tamal Krishna Maharaj se, to wo gaye dakshina dene ke liye guru ko, to unhone kaha ke, nahi, main ye dakshina nahi chahta hu, main tumko chahta hu.
So, anyway, we are offering you, you're all now prasadam, so. Prasadam means the Lord's mercy, it doesn't mean
food.
We're all thinking prasad means food, but actually it means kripa.
Hum sab sochte hain ki bhagwan prasad ka arth hai khana, parantu vastav mein prasad ka arth hai bhagwan ki kripa.
Okay. So now, of course, there's one devotee taking second initiation, and that means Brahman initiation means they have to develop the qualities of being a Brahman.
So ek bhakta jo hai, wo aap dusri diksha le rahe hain, jiska arth hai Brahman ki diksha le rahe hain, uska arth hai ki use sab Brahman ki gun apne andar lane chahiye.
Okay, so now the devotees will come up and get their beads and their take their vows. I don't know if there's space for them to go to Prabhupada first, is there? If they would make a little aisle or something? Okay, so one by one, the devotees will take their vows, but first they offer obeisances to Prabhupada, Lord Jagannath, and then they come and offer obeisances here. First is Jaswant. And then after that, his wife. What? Oh, they didn't do the purification. Wait. Wait for it. Beto. What? I know. First you have to do the purification, yeah. Okay.
Om Keshwaya Namaha.
Om Keshwaya Namaha.
Om Narayana Namaha.
Om Narayana
Namaha. Om Madhvaya Namaha.
Om Madhvaya Namaha.
Om Pavitra,
Pavitrava,
Sarvastam, Ratopiva,
Yasmarat,
Purikakshikam, Tamahir, Tamahir, Suji,
Sri Vishnu,
Om Apavitra Pavitrava Sarvavastam Ratopiva Ya Smarat
Purikakshikam
Haya
Vaya
Agraha Suji
Sri Vishnu
Om Apavitra Pavitrava
Pavitrava
Sarvastam Tato